नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम शामिल हों और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इसके परिचय अर्थात पृष्ठभूमि को देखा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय एक और उसके चार पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम याकूब की पत्री से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को समझ सकें। इसलिए आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हम परीक्षाओं की घड़ी में धीरज को उत्पन्न कर सकें, विश्वास में स्थिर रह सकें और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, नए नियम की सर्वप्रथम पत्री याकूब की पत्री थी और याकूब यहूदी विश्वासियों को जो तीतर बीतर होकर रहते थे कहता है कि वे व्यवस्था के कर्मों की अपेक्षा उद्धार से उत्पन्न कार्यों द्वारा अपने विश्वास का प्रमाण दें। उनका विश्वास कर्म की परखनली में परखा जाए। विश्वासियों के लिए परीक्षा का समय मुंह लटकाने का नहीं, परंतु आनंद का समय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किसी भले उद्देश्य के निमित्त नाना प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा उनके विश्वास को परखता है और विश्वास का परखा जाना धीरज उत्पन्न करता है। तो आइए हम याकूब की पत्री एक अध्याय उसके चार पद को पढ़ें। लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, धीरज के द्वारा ही आप पूर्ण विकसित मसीही या विश्वासी बनते हैं। अब परमेश्वर आप में धीरज कैसे उत्पन्न करेगा? एक अति रोचक बात यह है कि धीरज आत्मा का फल है। आप प्रयास करके धीरजवंत नहीं हो सकते और न ही पवित्र आत्मा थाली में सजाकर आपको धीरज का वरदान देगा। धीरज कष्ट उठाने और परीक्षाओं से उत्पन्न होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आप धीरज के बिना एक पूर्ण परिपक्व विश्वासी कभी नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि कुछ विश्वासी सदैव अविकसित शिशु ही रहते हैं। एक बार मैंने अपनी रविवारीय आराधना में कहा कि बच्चों के नर्सरी से अधिक बच्चे तो आराधनालय में उपस्थित हैं। मेरी इस टिप्पणी पर ठहाकों की गूंज सुनाई नहीं दी। अंतर केवल यह था कि नर्सरी के बच्चे अति सुंदर थे और आराधनालय में उपस्थित बच्चे अधिक सुंदर नहीं थे, वे गंभीर थे। आज हमारे कलीसियाओं में बहुत चीख पुकार, आलोचना, उथल पुथल और तनाव व्याप्त है। इसका मुख्य कारण है कि अधिकांश विश्वासी परिपक्व नहीं हैं, वे आज भी शिशु ही हैं। भजन संहिता 131 उसके एक और दो पद में दाऊद लिखता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। दूसरे शब्दों में दाऊद कहता है, मैंने यह जान लिया है कि मुझे विकसित होना है, मुझे दूध छोड़कर ठोस आहार खाना है, मुझे जीवन की रोटी खाना चाहिए। परमेश्वर ने दाऊद को परखा और परिणाम स्वरूप वह विकसित हुआ। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पौलुस लिखता है कि धीरज विश्वास द्वारा धर्मी ठहरने का एक प्रमाण है। केवल यही नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अतः सब बातों के पीछे एक उद्देश्य होता है। मेरे प्रियो, आज अनेक ढोंगी और सतही पवित्र जन हैं। विश्वासी होकर भी अनेक जन सुरक्षा का बोध नहीं करते। विश्वासियों में कुछ लोग परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाकर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं। कुछ विश्वासियों के विचार में हमें नई नैतिकता को अपना लेना चाहिए। मेरे प्रियो, इन विश्वासियों की समस्या है कि वे अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, वे शिशु ही हैं। परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा धीरज उत्पन्न करना चाहता है कि हम परमेश्वर की परिपक्व संतान बने। आज हमें इसकी कैसी महान आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आवश्यक है कि परमेश्वर हम पर परेशानियों को डाले कि हम धीरज धरना सीखें। इसमें हम आशा की ओर बढ़ेंगे और प्रेम जागृत होगा। मेरी सेवा में मैंने देखा है कि पवित्र आत्मा ने अनेकों के जीवन में यह काम किया है। मुझे एक ऐसे मनुष्य का स्मरण आता है जिससे जब मेरी पहली भेंट हुई थी, तब वह लगभग सबकी ही आलोचना करता था। मैंने ऐसा आलोचक पहले कभी नहीं देखा था। वह कलीसिया की साप्ताहिक बाइबल अध्ययन सभा में आने लगा। मैं देखता था कि वह बाइबल साथ में लाता था और टिप्पणी भी लिखता था। 10 सालों में परमेश्वर ने उस पर अनेक कष्ट आने दिए, परंतु वह विकसित होता गया और एक अत्यधिक मधुर और परिपक्व विश्वासी बना। परमेश्वर अपनों को ऐसी परख देता है ताकि हर एक धीरज में बनकर बलवंत होता जाए। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। ध्यान दीजिए, बुद्धि यहां याकूब द्वारा व्यक्त परीक्षाओं के संदर्भ में है। हम पर परीक्षाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं। आप इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? इसका हल आप कैसे करेंगे? आप इस विषय को कैसे संभालेंगे? आप इस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? यदि आप किसी समस्या के संबंध में बुद्धि की कमी का बोध करते हैं, तो आपको बुद्धि के लिए परमेश्वर के निकट जाना होगा। जी हाँ, बुद्धि ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग और अभ्यास है। अनेक लोगों में ज्ञान होता है, परंतु वे उसका व्यवहारिक अभ्यास कभी नहीं कर पाते हैं। आज भी मैं अपने एक फुटबॉल खिलाड़ी अर्थात मित्र के विषय में सोच सोच कर हंसता हूँ। वह अपने पढ़ाई में PhD था। एक दिन फुटबॉल खेलते समय वर्षा होने लगी। उसने मुझे बड़े आश्चर्य से देखकर कहा, अब क्या करें? आपको वर्षा से बचने के लिए PhD की आवश्यकता नहीं है। मैंने उससे कहा, मेरे विचार में हमें छत के नीचे चलना चाहिए या हमें खेलना चाहिए। बुद्धि का अभिप्राय है कि किसी परिस्थिति विशेष में या परीक्षा के समय क्या कदम उठाना है, या समस्याएं उत्पन्न हो या प्रश्न खड़े हों, जीवन में यह सब बहुत है, इसलिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है ताकि वह हमारी सहायता करे। लिखा है, बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है। परमेश्वर बुद्धि बांटने में व्यस्त है। उदारता, उदारता से अर्थात बिना हाथ रोके, ऐसी स्थिति में आपकी सहायता में कंजूसी नहीं करता है। मर्दिन आर विंसेंट के अनुसार बिना उल्हाना दिए का अर्थ है बुराई और कड़वाहट से रहित परिशुद्ध देना। यदि हम में बुद्धि की कमी है तो हम परमेश्वर से मांगे, वह हमारी प्रार्थना सुनेगा और उत्तर भी देगा। याकूब की पत्री 1:6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। मेरे प्रियो, शायद आपकी यह समस्या ना हो, परंतु मेरे मसीही जीवन में यह समस्या अधिकांश समय रही है कि मैंने परमेश्वर पर संदेह रहित विश्वास नहीं किया। मुझे आप गलत न समझें, मैं प्रभु यीशु पर अपने उद्धारकर्ता होने का विश्वास करता हूं और किया है। मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूं कि उसने मेरा उद्धार किया है और मुझे स्वर्ग ले जाएगा। मैं पूरे मन से यह विश्वास रखता हूं, परंतु इस जीवन की व्यवहारिकता में मैं समस्याओं से घिरा हुआ हूं। उदाहरण के रूप में, मैं जब कॉलेज में गया तब मैं पूर्ण रूपेण अविश्वासी था। कहने का मतलब है कि मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जान पाया था। मुझे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे कॉलेज में सफलता प्रदान करेगा। मैं एक गरीब विद्यार्थी था जिसे उधार पैसा लेना पड़ता था और पूरे समय काम भी करना पड़ता था। एक वर्ष पूरा होता तो मुझे अगले वर्ष की चिंता होने लगती थी कि मैं क्या करूंगा, परंतु परमेश्वर ने प्रति वर्ष मेरे लिए द्वार खोला और मैं अध्ययन पूरा कर पाया। कॉलेज के वर्षों में मैं एक अभागा मनुष्य था। अब जब मैं उन दिनों को याद करता हूं तो सोचता हूं कि यदि मैं परमेश्वर में विश्वास रखता तो जीवन का आनंद उठा पाता। लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्या आप एक विश्वासी का मुंह लटका हुआ जीवन देखते हैं? क्या आप सोच सोचकर परेशान हैं कि आपकी समस्या का अंत क्या होगा? मैं आपकी दशा को अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से निकला हूं। जी हां, आप परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं रखते? आप उसके हाथ में अपने हाथों को क्यों नहीं दे देते? मैं जानता हूं कि जीवन की समस्याओं को संभालने की बुद्धि मुझ में नहीं है। मैं जानता हूं कि इस मिलीजुली सभ्यता में जीने योग्य मैं नहीं हूं, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता है और वही मुझे आवश्यक बुद्धि प्रदान कर सकता है। वह कहता है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और वह कोई समाधान अवश्य निकालेगा, परंतु हम कूद पड़ते हैं और अपना निर्णय ले लेते हैं। इस प्रकार मैं विश्वास के साथ अपनी समस्या परमेश्वर को दे देता हूं, परंतु अगले दिन मैं विश्वास से टल जाता हूं। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर तो कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए मैं ही कुछ करता हूं। अतः यहां मैं अपना निर्णय लेता हूं। ऐसा मनुष्य समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछल जाती है। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास किस तरह का है? याकूब की पत्री 1:7 में लिखा है, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ध्यान दीजिए, यदि आप अपनी समस्या का समाधान खोज रहे हैं तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आप परमेश्वर के हाथ में क्यों नहीं दे देते हैं ताकि वह आपका समाधान करे। अब याकूब एक कहावत सुनाता है जो बहुत अच्छी है, आइए हम पढ़ें याकूब एक अध्याय उसके 8 पद। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इसराइल की यह एक मुख्य समस्या थी। होशे इसराइल को मूर्ख कबूतरी कहता है। वह पहले तो मिस्र के पास सहायता मांगने के लिए गए, वहां से त्यागे जाने के बाद वे अशूरों से सहायता मांगने के लिए गए। वे यहां वहां हाथ मारते रहे, परंतु उन्होंने परमेश्वर को नहीं खोजा, उसके पास नहीं गए। हम भी परेशानी में यहां वहां भागते हैं और समस्या का समाधान ढूंढते हैं, खोजते हैं, जब तक कि निराशा हमें परमेश्वर के चरणों में ना ले आए। क्या आपने आज का दिन आरंभ करते समय आज के सब कार्य विचार परमेश्वर के हाथ में दिए हैं? मैं सेवक होने के कारण बहुतों को परामर्श देता हूं और अनेक नए चेहरों से भेंट करता हूं। मेरी एक विशेष प्रार्थना थी, हे प्रभु, मैं आज नए लोगों से भेंट करूंगा और मैं नहीं जानता कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना होगा। एक मनुष्य ऐसा भी होगा जो अति उत्तम मित्र बनेगा और परमेश्वर के वचन के प्रसारण में सहायता करेगा, या एक मनुष्य मेरी सेवा को हानि पहुंचाना चाहेगा। अतः हे पिता, अंतर समझने में आप मेरी सहायता करना, मेरी सहायता करना कि किसके गले में हाथ डालकर सहायता करूं और उस मनुष्य से मुझे बचाना जो मेरी सहायता नहीं चाहता। हे प्रभु, आज मुझे बुद्धि देना। मेरे प्रियो, हमें जीवन के विषयों का सामना करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बिना बुद्धि के हम कुछ नहीं कर सकते। याकूब के पत्र 1:9 में लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। ध्यान दीजिए, आप कहेंगे मैं एक गरीब या दीन मनुष्य हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं धनवान नहीं हूं। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके पास बहुत धन है, स्वर्ग में आपका खजाना रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी पर आपके पास क्या है? मसीह में आपके पास क्या है? मसीह में हमारे पास सब कुछ है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3:21-23 में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, मैं मसीह का हूं और जो कुछ मसीह का है वह सब मुझे दिया जाएगा। मेरे पास जीवन है, आशीषें हैं, यहां तक कि एक दिन मृत्यु भी हो जाएगी और मृत्यु आ जाएगी। हम इन सब बातों में आनंद मनाएं। चाहे आप सबसे अधिक दीन संत हों या पृथ्वी पर सबसे अधिक गरीब हों, आप मसीह यीशु में धनवान हैं और आपके पास आनंद का विषय है कि आप मसीह में हैं। याकूब के पत्र 1:10 में लिखा है, और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। मैं कहीं कहीं देखता हूं कि इमारतों पर धनवानों के नाम लिखे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे आज कहां हैं? उन फूलों के समान हैं जो कल खिले थे और आज झड़ गए। वे कभी हस्ती रखते थे, उनका ऐश्वर्य और नाम था, परंतु आज वे सूख कर समाप्त हो गए। अतः अपने धनवान होने पर आनंदित ना हो, क्योंकि आपका धन अधिक समय तक नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आपने सोने खरीदे होंगे और ऐसे शेयर भी लिए होंगे जो डूबेंगे नहीं, आप घाटे में नहीं रहेंगे। परंतु ये सब धन एक दिन आपको खो देगा। एक पुरानी कहावत है, कफन में जेब नहीं होती। कहने का अर्थ है कि आप पैसा साथ लेकर नहीं जाएंगे। धनवान घास के फूल के समान है जो सूख कर झड़ जाएगा। याकूब की पत्री एक अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, वर्षों पूर्व मुझे एक सभा में प्रवचन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर एक वृद्ध महिला थी जिसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा और यह उसका अंतिम समय था जब उसने प्रभु को ग्रहण किया। मैं उसे देखकर सोच रहा था कि उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली उसकी सुंदरता अब ढल गई थी। परमेश्वर कहता है कि धनवान इसी प्रकार ढल जाएगा। मेरे मित्रों, आनंद करें कि आपके पास एक उद्धारकर्ता है जो आपको सिर्फ स्वर्ग ही नहीं ले जाएगा, परंतु वह आज भी आपकी सहायता करेगा। क्या आप उससे सहायता पाना चाहते हैं? क्या आप उस बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हां, तो आपको उसके पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह आपको सहायता देना चाहता है, वह आपको धनवान बनाना चाहता है और वह चाहता है कि आप उसकी संगति में, उसके विश्वास में बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर याकूब उन 12 गोत्रों को लिखते हुए कहता है कि वे परमेश्वर से बुद्धि मांगे ताकि सही निर्णय अपने जीवन में ले सकें। आइए आज हम भी अपने इन कठिन समस्याओं के बीच परमेश्वर से बुद्धि मांगे ताकि हम अपने आप को जाने पाए कि हमारा उद्धारकर्ता है जो हमें आनंद दे सकता है, जो हमारी सहायता कर सकता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप सब आज के इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे।